छवि सिंघानिया की सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी थी और सब उसमें बिजी थे। इस बीच मौका पाकर आयु डॉक्टर मानसी से मिलने आई थी। डॉक्टर मानसी ने आयु की हेल्थ अपडेट देते हुए उसे ये कहा कि मेडिकेशन उस पर असर नहीं कर रही है, ऐसे में चीज़ें उसके लिए मुश्किल होने वाली हैं। आयु समझ गई थी कि अब उसके लिए जान का खतरा बढ़ गया है। आयु जैसे ही डॉक्टर मानसी के केबिन से बाहर निकली, उसे अयान दिखाई दिया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि अयान ने आयु और मानसी की सारी बातें सुन ली थीं। अयान को रोकने के लिए आयु उसके पीछे गई, लेकिन अयान तेज कदमों से चलकर आरफ के पास जा रहा था। आयु इस हालत में ज्यादा तेज चल नहीं सकती थी, फिर भी वो दौड़ के अयान के सामने आ गई। अयान के सामने आते ही आयु ने हांफते हुए प्लीडिंग वे में कहा, प्लीज अयान, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगी। आई रिक्वेस्ट यू, आरफ को कुछ मत बताना। तुझे ना बातें छुपाने की आदत हो गई है छिपकली, लेकिन मुझसे ये एक्सपेक्ट मत कर। कल को तू भाई की लाइफ में नहीं रही ना, तो वो पूरी दुनिया को तबाह करने पर तुल जाएंगे। तू अच्छे से जानती है कि वो तुझे कितना प्यार करते हैं। इन बच्चों की वजह से तुझे कुछ हुआ तो वो उम्र भर उनकी शक्ल भी नहीं देखेंगे, फिर कौन पालेगा इन्हें, अयान ने गुस्से में जवाब दिया। अयान की बात सुनकर आयु की नज़रें झुक गईं। वो रोते हुए बोली, तुमने गलत सुना है, मानसी ऐसे बोल रही थी कि मेडिकेशन ने अब तक रिस्पॉन्स नहीं किया है, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि आगे भी ना करे। अयान ने सिर हिलाकर कहा, हाँ तो पूरे 9 महीने तक खुद पर एक्सपेरिमेंट करवाते रहना और एट दी एंड यही निकल कर आएगा कि तेरी बॉडी ने किसी भी मेडिकेशन को रिस्पॉन्ड नहीं किया है। मैं तेरी बेवकूफियों में तेरा साथ हरगिज़ नहीं देने वाला। तुझे जो सोचना है समझना है समझ, मैं भाई को सब कुछ बताने जा रहा हूँ। हाँ, तब तक ये सोच ले उनके गुस्से को कैसे हैंडल करना है। अयान अभी भी अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था। उसने आयु को साइड किया और वहाँ से आगे जाने लगा। आयु समझ गई थी अयान को रोकना आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। वो इस मामले में अयान को फोर्स भी नहीं कर सकती थी। आयु धीमे कदमों से चलते हुए अयान के साथ पीछे जा रही थी, तभी उसे साक्षी दिखाई दी। साक्षी को देखते ही आयु अयान के पीछे जाने के बजाय साक्षी के पास जाकर बोली, साक्षी दी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, क्या प्लीज़ आप कुछ देर के लिए अयान का ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं प्लीज़ मेरे लिए? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम ऐसा क्यों करवाए हो और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है क्या? कुछ भी करने से पहले साक्षी ने पूछा। दी प्लीज़, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आपको बाद में सब समझा दूंगी, अभी के लिए आप अयान को लेकर कहीं चली जाइए या आपको जो भी सही लगे, आयु ने जवाब दिया, जिस पर साक्षी ने हामी भरी। साक्षी तेज कदमों से चलती हुई अयान के पीछे गई। अयान आरव के पास पहुंच चुका था। आरव इस वक्त गौरवी जी और राइशा के साथ छवि के रूप में बैठा था। छवि को अभी वहां शिफ्ट नहीं किया गया था, वो उसी के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अयान वहां पहुंचा, साक्षी ने वहां आकर कहा, अयान क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलोगे? मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना था। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ साक्षी, अभी मुझे भाई से बात करनी है, अयान ने सीरियस टोन में जवाब दिया। साक्षी को पूरी बात तो नहीं पता थी, लेकिन वो कुछ कुछ समझ गई थी कि बात आरव से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से आयु आरव और अयान को मिलने नहीं दे रही। आयु भी वहां पर पहुंच चुकी थी और अयान उसकी तरफ गुस्से में देख रहा था। अयान कुछ कहता उससे पहले साक्षी फिर से बोल पड़ी, अयान वो एक्चुअली एक्सीडेंट के टाइम जहां मुझे चोट लगी थी वहां थोड़ा पेन फील हो रहा है, चक्कर से भी आ रहे हैं, पहले भी बताना चाहती थी पर नहीं बता पाई क्योंकि आंटी की तबीयत खराब थी, साक्षी ने बहाना बनाया। आरव साक्षी की बात सुनकर बोला, अयान चलो जाओ, देखो तुमसे मिलने के लिए बहाने बनाने पड़ रहे हैं। मैं कोई बहाने नहीं बना रही, साक्षी ने आरव को तिरछी निगाहों से घूरते हुए कहा। चले जाओ अयान, वैसे भी सर्जरी के बाद तुम थक गए हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, आयु ने बीच में बोलते हुए कहा। मजबूरन अयान को साक्षी के साथ जाना ही पड़ा। साक्षी और अयान के वहां से जाते ही आयु जल्दी से आरव के पास आकर बोली, मैं डॉक्टर मानसी से मिली थी, उसने मेरी मेडिसिन्स चेंज की हैं, उसने कहा कि पहले वाला मेडिकेशन सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। हाँ तो ठीक है ना, लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो, आरव ने पूछा। वो इस बात को काफी नॉर्मली ले रहा था क्योंकि आयु ने उसे बताया ही काफी कैजुअल तरीके से था। कुछ नहीं, थोड़ी थक गई हूँ, घर चलते हैं, मुझे आराम की जरूरत है, आयु ने कहा। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरीके से अयान को फिलहाल आरव से बात करने का मौका मिले। काफी हद तक उसने बात को आधी अधूरी बताकर आरव को संभाल लिया था। गौरवी जी ने आरव से कहा, मैं तुम्हें कहने ही वाली थी कि इसे घर लेकर चले जाओ, काफी देर से हॉस्पिटल में है, थक गई होगी। आरव ने आयु की बात पर हामी भरी, लेकिन आयु वहां से जाने से पहले एक बार अयान से बात करना चाहती थी। आयु ने वहां से निकलने से पहले आरव से कहा, मुझे अयान से कुछ बात करनी है, तो मेरा वेट करो, मैं आती हूँ। आयु ने आरव के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और सीधे अयान के केबिन में गई। साक्षी अयान के केबिन में उसके साथ थी और अयान उसकी चोट को देख रहा था। जैसे ही अचानक वहां आयु आई तो साक्षी खड़ी हो गई। साक्षी के हाव भाव देखकर अयान ने सिर हिलाकर कहा, डोंट टेल मी साक्षी, आप इसकी बेवकूफी में इसका साथ दे रही हैं, मैं पहले क्यों नहीं समझा, आप दोनों साथ में ही उस रूम में आई थी। अयान को अब आयु के साथ साथ साक्षी पर भी गुस्सा आ रहा था। देखो मुझे पूरी बात पता नहीं है, लेकिन इसने मुझसे हेल्प मांगी थी तो मैं मना कैसे कर सकती थी, साक्षी ने जवाब दिया। वो अयान को भी नाराज नहीं करना चाहती थी।
यही तो बात है साक्षी, आपको पूरी बात पता नहीं है और पता नहीं क्यों सब इसकी मासूम बातों में आ जाते हैं। लेकिन मैं अब आप दोनों की एक नहीं सुनने वाला, मैं भाई के पास जा रहा हूँ सब सच बताने के लिए, अयान ने चिढ़ते हुए जवाब दिया और वहां से जाने को हुआ। तभी आयु उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने केबिन का दरवाजा बंद किया और अयान से सख्त हंसे में कहा, मैंने आरव को अपने तरीके से सब सच बता दिया है, तुम चीजों पर ओवर रिएक्ट कर रहे हो। बहुत बार कुछ मेडिसिन हमारी बॉडी पर रिस्पॉन्स नहीं करती हैं, तो हम खुद मेडिसिन चेंज कर देते हैं। बस मेरे साथ भी यही हुआ है, तुमने आधी अधूरी बातें सुनी और आ गए गुस्सा करने पर। हाँ, मैंने आधी अधूरी बातें ही सुनी थी जिनमें तुमने साफ साफ अपने मुंह से कहा था कि मेरी जान पर खतरा बढ़ गया है, अयान ने सार्कास्टिक वे में कहा। आयु अयान को समझाते हुए बोली, हाँ तो आधी अधूरी बातों को ही तो सुना था। उसके बाद मानसी ने कहा था कि मेडिकेशन चेंज करने के बाद हो सकता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, एक महीने बाद ही पता चलेगा। लेकिन तुम हो कि बेवजह इतना गुस्सा कर रहे हो। मैंने आरव को भी इस बारे में बता दिया है कि मेरी मेडिसिन रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, इसलिए मानसी ने मेडिकेशन चेंज किया है। देखो अब अबॉर्शन का ऑप्शन नहीं रहा है, तो बात को बढ़ाओ मत, सब ठीक ही होगा, बी पॉजिटिव। आयु की बातें सुनकर साक्षी को मामला समझ आ गया था। उसने अभी भी आयु का फेवर करते हुए कहा, ये सही बोल रही है, तुम्हें इसका साथ देना चाहिए। आरव को हर छोटी बात पर गुस्सा आता है जो इससे जुड़ी हुई है, एटलीस्ट तुम तो समझदार बनो।
आयु ने साक्षी की बात पर सहमति जताई, मजबूरन अयान को मानना ही पड़ा। अयान के मानते ही आयु उन्हें बाय बोलकर तुरंत घर चली गई थी। वैसे भी अब सच जानने के बाद वो अपनी लाइफ का एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। खुराना मेंशन में शादी का माहौल था। रात के वक्त में लाइटिंग की वजह से घर और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। खुराना मेंशन के गार्डन एरिया में मंडप तैयार किया गया था जहां बीचों बीच कबीर वेड्स युवानी लिखा हुआ था। कबीर और युवानी की शादी खुराना मेंशन से ही हो रही थी क्योंकि आरव नहीं चाहता था कि आयु को किसी भी तरह की दिक्कत हो। आयु की प्रेगनेंसी का 7th मंथ पूरा होने वाला था और इस वक्त उसके लिए बाहर निकलना तो दूर, बेड से कदम उठाना भी मुश्किल था। ट्विंस होने की वजह से उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस वक्त भी आयु अपने रूम में थी और आरव उसे तैयार कर रहा था। इस टाइम में आरव और आयु एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। आरव ने आयु की मैटरनिटी के हिसाब से वाइन कलर का इवनिंग गाउन डिजाइन करके दिया था जो काफी कम्फर्टेबल और स्टाइलिश था। आयु उस स्लीवलेस इवनिंग गाउन में काफी खूबसूरत लग रही थी। आयु को इयररिंग्स पहनाते हुए आरव बोला, क्या जरूरत है आयु तुम्हें नीचे जाने की, मैंने सारा सेटअप तैयार किया है, तुम यहां से बैठकर एंजॉय कर सकती हो। आरव ने भी आयु के ड्रेस से मैच करता हुआ वाइन कलर का इंडो वेस्टर्न पठानी ड्रेस पहना था। आरव के ऐसा कहने पर आयु ने तिरछी निगाहों से उसे घूरते हुए देखा और कहा, मेरा भी बाहर जाने का मन करता है, तुमने मुझे कोई भी फंक्शन को ठीक से अटेंड नहीं करने दिया, बाकी सबकी तो कोई बात नहीं लेकिन आज शादी है तो प्लीज पूरी रात रुकने देना। और ये तुम्हें किसने कह दिया कि तुम पूरी रात यहां रुकने वाली हो, हम वहां सिर्फ 2 घंटे रहेंगे, उसके बाद तुम ऊपर रूम में जाकर रेस्ट करोगी, आरव ने सख्त लहजे में जवाब दिया। आयु को तैयार करने के बाद उसने आयु का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। शादी को अटेंड करने के लिए बाकी सब भी आए हुए थे, ओबरॉय फैमिली और मंथन की पूरी फैमिली, छवि सिंघानिया भी शादी में आए थे। सर्जरी के बाद से वो खुराना मेंशन में ही रह रही थी क्योंकि उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। आरव और आयु को वहां देखते ही अयान उसके पास आ गया, वैसे भी वो उससे काफी दिन बाद मिल रहा था। अयान के आते ही आरव ने आईज रोल करके कहा, ये देखो तुम्हें यहाँ आए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ और ये पहले ही यहाँ आ गया। हाँ मुझे तो आना ही था क्योंकि मैंने बहुत मिस किया इसे, प्लीज अब क्या आप हमें थोड़ी सी प्राइवेसी देंगे ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें, अयान ने आरव की तरफ देखकर प्लीडिंग वे में कहा। ठीक है लेकिन मेरी वाइफ का ध्यान रखना, मैं इसे तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ, आरव ने कहा और वहां से दूसरी तरफ चला गया। दूसरी तरफ जाते ही उसकी नज़र छवि पर पड़ी जो व्हील चेयर पर थी, अयान ही उसका ध्यान रख रहा था। अयान के जाते ही छवि अकेली हो गई थी तो आरव उसके पास चला गया। आरव छवि के पास जाकर बोला, मिसेस सिंघानिया आपको रेस्ट करना चाहिए, आपको भी शादी में नहीं आना चाहिए था। आरव के मुंह से खुद के लिए मिसेस सिंघानिया सुनकर छवि ने उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, मैं बार बार तुम्हें नहीं समझाऊंगी, किसी बिगड़े हुए बच्चे की तरह बिहेव मत करो, कॉल मी मॉम, हमारी डील हुई थी, अगर मेरी बात सच निकली तो तुम मुझे मॉम कहकर बुलाओगे। आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और धीरे से कहा, ओके मॉम, आप लड़कियां इतनी जिद्दी क्यों होती हो, वहां आयु मेरी बात नहीं सुन रही हो और यहां पर आप, मैं किस किस को संभालूं। फिलहाल तो तुम खुद को संभाल लो, वही काफी है, तुम्हारी आंखें साफ बता रही है कि पिछले कई रातों से तुम सोए नहीं हो, ज्यादा परेशान करती है क्या वो मेरे बेबी बॉय को, छवि ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसका हक बनता है तो वो कर सकती है, खैर छोड़िए मैं आपको फूड काउंटर पर लेकर चलता हूँ, आज आपको सब कुछ खाने की छूट है तो मजे लीजिए, आरव ने जवाब दिया और फिर छवि की व्हील चेयर पकड़कर उसे फूड एरिया की तरफ ले जाने लगा। वहीं आरव के जाते ही अयान ने सबसे पहले आयु को एक चेयर पर बिठाया और खुद उसके पास में आकर बैठ गया। अयान ने एक नज़र आयु की तरफ देखकर कहा, क्यूट लग रही हो छिपकली।
सीधे सीधे कहो ना कि मोटी हो गई हो, आयु ने आईज रोल करके कहा। हाँ फिर भी क्यूट लग रही हो और मेरा तुम्हारा गाल खींचने का मन कर रहा है, लेकिन गलती से भी भाई ने देख लिया तो मुझे तुमसे बात नहीं करने देंगे। इससे पहले कि वो यहाँ पर आए तुम खुद ही बता दो कि तुम्हारी हेल्थ अपडेट क्या है, अयान ने बात को घुमाए फिराए बिना सीधे सीधे पूछा। मुझे लगा तुम डॉक्टर मानसी से सब कुछ पूछ लेते होंगे। वैसे गुड न्यूज़ है कि मेडिकेशन 40% असर कर रहा है, बाकी आई होप सब अच्छा ही हो। मेरे पास 2 महीने का टाइम और है जब थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, आयु ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। उसे खुश देखकर अयान को भी अच्छा लग रहा था। अयान ने उसकी बात पर हामी खरी। उसके बाद अयान आयु को शादी के मंडप के पास लेकर गया, जहाँ कबीर और युवानी की शादी की रस्में शुरू हो गई थी। रायशा उनकी शादी की रस्मों को काफी गौर से देख रही थी। इस बीच उसकी नज़र मंथन पर पड़ी तो वो खोई हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। बीते 4 महीनों में उसकी 2 से 3 बार मंथन से मुलाकात हुई थी और वो दिल ही दिल में मंथन को पसंद करने लगी थी। आयु वहाँ अयान के साथ खड़ी शादी की रस्मों को देख जरूर रही थी, लेकिन उसे काफी अजीब फील हो रहा था। आयु ने अपनी नजरें दौड़ाकर इधर उधर देखा तो उसे आरव कहीं नजर नहीं आया, तो उसने कुछ देर वेट करने का सोचा।